ਸਭ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੀਸਰਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਲ। ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੋੜੀ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਗਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਆਤਮਾ ਨਾ ਰੋਲ। ਉਸਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੂੰ ਜੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਾਂ ਸਵਾਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕੜੀਨਾ ਹੈ, ਮਤ ਨੇ ਕੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ विकास है। इस करके जेड़े हुण घर अंदर बैठे रहिंदे ने ना, इस सोच अंदर के दुकान ते जा के ही साड़ी जाग खुली चाहीदी है, उन्हां नूं झंझोड़ो। उसका इलाज, उसका तरीका एक है, आवाज़ जरूर दिओ। जे पहरेदार सौ गया ना फिर बड़ी मुश्किल बनेगी। पहरेदार नूं ते आवाज़ देंदे ही रहना चाहिए, जागदे रहो, जागते रहो, ताकि उसनूं पता लग जाए कि असी सुचेत होके संसार ते रहना है। आपने सब तो पहला प्रसाद सानू गुरुद्वारे मिलता है, कड़ा प्रसाद, अते इस बारे इतना कुछ सानू ज्ञान रवे, ये सानू दीवान दी समाप्ति तो बाद मिलता है, ताकि असी कीर्तन शब्द व्याख्या हुक्म सुन लिया है ते हाथ दोनों जोड़ के प्रसाद लैने हाँ, कड़ा प्रसाद, कि जो तुसी हुक्म कीते हन मैं इन्हां नूं ग्रहण कर रहा हाँ सिंबालिक तौर ते चिन्ह दे तौर ते, ताकि किसी वेले मेरे अंदर ये ख्याल पैदा ना हो जाए कि मैं सुन के इत्थे रख जाना है। ये ख्याल बड़ा चलदा रहा है कि जो सुनो उत्थे ही रख आओ, ऐसा साडे घर विच नहीं है, असां ते जीवन विच टालना है। इस करके कड़ा प्रसाद सानू जो मिलता है असी उसका प्रगटावा करते हाँ कि तुसी जो बख्शिश कर रहे हो मैं ग्रहण कर रहा हाँ। दूसरे कड़ा प्रसाद बन वेले आपनू पता है तिन्ने रस्ता इको जीआं पाईआं जांदियां ने, ते हुण साडियां पुरातन ग्रंथां विच वी रहत मर्यादा विच वी लिखिया होया कि ठीक कड़ा प्रसाद उस वेले ही बनेगा जे जप जी दा पाठ बनाने वाले ने कीता है, उहदे केती छुट्टी नाल हुंदी है, उहदे कड़ा प्रसाद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। ये भी इस गल का चिन्ह है कि कोई चीज़ तैयार करनी होवे, खासकर प्रसाद, तो सहज नाल होवेगा, अते सहज की शक्ति इतनी है। आप गुरु नानक पिता ने समझाया, दे दिस साख भरी हरियावल सहज पके सो मीठा, उस तो बगैर मिठास नहीं है। यही सानू पहला प्रसाद मिलता रहे, ताकि असी इतों जो चीज़ लैके जाइए अपने जीवन च टालीए, रगा विच टालीए। दूसरा प्रसाद है गुरु प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक ओंकार सतगुर प्रसाद 537 वार आया है। ये उन्हां नूं जवाब है जिहड़े सानू आके गलत उपदेश करदे हन कि तुसी पंज पौड़ियां आनंद साहब क्यों पढ़दे हो। दीवान दी समाप्ति दे विचार अंजाम पुरश हुंदा है, उसनूं पता हुंदा नहीं है, ये मेरे गुरु दी मर्जी है, जो गुरु कर गया है मैं कौन आ इसनूं वधा ते कटाण वाला। हुण कोई ये आखे साहिब गुरु अर्जन पातशाह ने एक ओंकार सतगुरु प्रसाद क्यों लिखिया है, आपने पूरा मूल मंत्र या पूरा क्यों नहीं लिखिया, ये तो वही जाने। 537 वारी गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आया है, 33 वारी गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद आया है, अते 8 वारी हुण वो भी जाने ऐसा क्यों करते हैं, सानू बिल्कुल समझ नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात एक दिन, क्योंकि कही जाती है दुराई नहीं जाती, इस करके भुल जाती है, ज्ञानी अर्जन सिंह जी परसों ही शायद या चौथ सानू समझा रहे सन, देखो गुरु पिता जी एक मेल जिथे आनंद साहब की समाप्ति है उतों सद शुरू हो गया है, अते कानूनन नियम तरतीब के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब की एक मिथी हुई तरतीब है जी, आप गुरु अर्जन ने बनाई है, वो तरतीब ये है, पहला गुरु नानक पिता की बाणी, फिर गुरु अमरदास की बाणी, गुरु अंगद पिता के श्लोक हैं, गुरु नानक की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, फिर गुरु रामदास जी की बाणी, फिर गुरु अर्जन पिता की बाणी, फिर भगत कबीर जी की बाणी, फिर नामदेव जी की बाणी, फिर रविदास जी की बाणी, फिर सदना जी की बाणी, फिर तन्ना जी की बाणी, फिर फरीद जी की बाणी, फिर सिखा की बाणी। एक तरतीब है गुरु ग्रंथ साहब निभी हुई, पर उन्हें आप गुरु जाने, असी कौन हाँ। उन्होंने सारे गुरु ग्रंथ साहब ये तरतीब तकरीबन 37 वारी तोड़ी है। हुण जिथे तोड़ी है ना, सानू समझना पवेगा आपने क्यों तोड़ी है। नहीं समझ आई तो फिर यही कहो कि सानू ये बात समझ नहीं आई, दलीलां च ना पाओ। अते ये जिसले समझ आ जाए फिर बड़ा सवाद है, जिस तरह कोई दरिया चल रहा होवे, अगे पहाड़ आ जाए, दरिया की आबशार बन जाए, ये गुरु जाने कि अगे क्यों इतना पहाड़ खड़ा कर दिता, उसकी आबशार बना दी ताकि लोग सैर भी कर, बिजली भी निकले, नज़ारा भी बन जाए। शायद यही कारण हो गए, कुछ समझाना चाहते सन, कोई नवी रोशनी देना चाहते सन। हुण कानून ये नहीं है, इत्थे गुरु नानक पिता की बाणी तो बाद गुरु अमरदास की बाणी है, अगे गुरु रामदास की बाणी चाहिए थी। तुसीं हुण ही देख लेना, साधु तो बाद फिर गुरु रामदास की बाणी है। आपने एक सिख की बाणी नूं गुरु अमरदास महाराज के अगे क्यों रख दिता, बस इसे करके कि सिख नूं ओ गल याद रवे जिहड़ी आप नूं दोहराई गई कि सिख दा आनंद इसे विच है जब उस नूं इह ख्याल है कि वाहिगुरु वल्लों मैनू सदा रोज़ पै रहा है। बस आनंद इसे ही है, जे याद रवे कि सदड़े नित पवन, होर आनंद कोई नहीं, दोनों इकट्ठे कर दिते हन। इस करके आप जाने क्यों ऐसा करदा रहा, क्यों उन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब अंदर 37 वारी इस तरतीब नूं तोड़िया। अते उन्हां नूं ही पता है, सिर्फ असी अनजान पुरश उन्हां दे चरणां च बैठ के अरदास करके पुछ सकते हाँ। संत गुरमुख सिंह बहुत सोहना क्या करते सन, अते गज के क्या करते सन, मैनू अज तक कोई ऐसा सज्जन नहीं मिलिया जेड़ा ये आखे मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ रहा हाँ। मैं जेड़ा भी मिलता है यही कहता है मैं गुरु ग्रंथ साहिब नू पढ़ रहा हाँ। बस इतों कहते असी खुंझ जाते हाँ, गुरु कोलों पढ़ी रहे कि गुरु नू पढ़ी रहा है, गुरु कोलों पढ़ी रहे। अजे तक ऐसा सज्जन कोई नहीं मिलिया जेड़ा कहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ रहा हाँ। गुरु कोलों जिसले असी पढ़न की आग्ञा लवेंगे, अते है भी तरीका यही सी आग्ञा सी, आप कहते स जिसले कोई अखंड पाठ शुरू होवे, पाठ शुरू होवे, इसलिए वही जानन कि उन्होंने 537 वारी क्यों लिखिया, 33 वारी पूरा क्यों लिखिया, अते 8 वारी आपने गुरु ग्रंथ साहिब अंदर लिखिया है एक ओंकार सतनाम गुरुप्रसाद। ये क्यों लिख रहे हैं, किस वास्ते लिख रहे हैं, मतलब तो इको ही है कि हर सिख नू पता लग जाए एक ओंकार कोल पुजन लही शब्द राही रोशनी पैदा कर, और कोई रस्ता नहीं है, कोई ना किसी कोल है ना किसी कोल होवेगा। मैं हथ जोड़ के जिसलिए गुरु नानक पिता की कोई तुक पढ़ने आना, उन्हां तो वड्डा कोई दुनिया ते नहीं है। जब गुरु ग्रंथ साहिब विच हुक्म हो गया कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक, वो कहिंदे पे ने बाणी च कहिंदे ने मैं अंधले नावे की जोत की। गुरु नानक साहिब की कोई अख नहीं सी, गुरु नानक साहब के सारी दुनिया नूं रोशनी देने वाले सन, सिर्फ ये समझाने लई कि ना लैणा नहीं है, ना ते जोत है, मते किसे नूं कोई भुलेखा हो जाए। मैं अंधले नावे की जोत, नाम आधार चलना गुर के भै भी। ये वो लिख रहे हैं जो दुनिया का मालिक है, जिसके सहारे सारी दुनिया टुर रही है, तो अगर भी टुरेगी। इसलिए कोई सज्जन इस बहस च ना पवे कि जिसले गुरप्रसाद का शब्द आया है, इस दे अर्थे ने शब्द राही प्रसाद पा के एक ओंकार कोल जाना है, होर कोई रस्ता नहीं है। अर्थ फिर कवि संतोख सिंह जी कर गए ने गुरु दे, उन्होंने जो शब्द के अर्थ किए हैं ये हैं, ताकि कभी किसी को भुलेखा ना पवे कि कोई व्यक्ति भी गुरु हो सकता है। जब आप गुरु पटा ने कह दिता कि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ये जोत रूप है, इसलिए गुरु दे अर्थ करन वेले कवि संतोख सिंह जी ने बड़ी साढ़े ते कृपा की थी, ते आखन लगे गुरु दे अर्थ हन गो तम तन अज्ञान अनित। गुरु दे अर्थ ए हन जो साडा अंधेरा दूर करे, जो शरीर तो उतां उठाए, जो लालच च ना पैन देवे, जो सब तो जरूरी है कि इंसान नु ए समझा देवे कि शरीर तेरा नहीं रहना, वाहिगुरु ने रहना है। गो तन तम अज्ञान अनित, रूप प्रकाश कियो जिन चित। जेड़ा चित दे अंदर ए प्रकाश कर देवे के तमा नहीं चाहिदा, अंधेरा दूर कर, वो समझ लो गुरु है, होर कोई गुरु नहीं है। अते यही कारण सी आप सानू समझांदे सन पिता, असी अनजान पुरुष उन्हां कोल जाने सा, आखने सा सारी दुनिया त्रै गुणा च पई हुई है, पातशाह सानू बिल्कुल समझ नहीं आउंदी, ये पंडितां दी गल, ये विद्वानां दी गल, कोई रजो है, कोई तमो है, कोई सतो है, सानू नहीं समझ आउंदी, भावें लख यतन करो समझ नहीं आएगी, कोई होर तरह समझाएगा। सानू तो आसान तरीका दसो कि रजो विच कौन है, तमो विच कौन है, सतो विच कौन है। गुरु महाराज कहन लगे आसान तरीका यह है, जिस वेले आप दा मन कीर्तन सुनदिया बिल्कुल न टिके, समझ लो तुसी तमो गुण विच हो। कितना आसान तरीका पता लग गया कि जिस वेले तुहाड़ा मन टिके ही ना, समझ लो असी अजे तमो गुण विच हाँ, या अंधेरा छाया होया है या लालच दे ग्रस विच हाँ। अते दूसरे, जे वाणी थोड़ी देर समझ आ गई है, थोड़ी देर चित लग गया है, फिर विचो ख्याल फट आ गया उस इमाम ते काजी वांगू कि मेरा बच्चा ना गिर जाए अपने खूह अंदर, या मैं घोड़िया के व्यापार च पियाँ, थोड़ी देर लगे थोड़ी देर ना लगे, थोड़ी देर तो बड़ा मन टिके, तो यकदम ख्याल आवे अज ते दुकान के बाहर एक गाह खड़ा होना है, समझ लो असी रजो भी चाह, रजो मैंने चांदी, तरीका यही है समझने का कि साडा सारा ध्यान चांदी विच है। जिस वेले असी इस अवस्था विच आ, ते जिस वेले हर एक तुक गुरु अर्जन पिता कहन लगे समझ आती रहे, पर हिरदे अंदर जानी शुरू कर देवे, समझ लो तुसी सतो विच हो। इस तो आसान तरीका सानू दस नहीं सुन सकते, इहो ही गुरु हर राय पिता ने सानू समझाया सी कि जिस इंसान ने बाणी नू ध्यान नाल सुन लिया अते ग्रहण कर लिया, उसकी अवस्था यह होएगी कि साध संगत मन सोवत जागे तो प्रभ नानक मीठा लागे। साध संगत की इको ही निशानी है कि इतने सुत्या मन जाग पवेगा, अते सुते जागे मन की निशानी यही है, मन जागे की ए निशानी, जागे मन की निशानी की है, हर कोई पूछता है कोई निशानी तो होएगी मेरा मन जाग पे है, तो महाराज कहते ने मन जागे की ए निशानी तो उर लागे मीठी बाणी। बस जिस वेले हिरदे नू बाणी मीठी लगन लग पई, मन जाग पिया, ये है आपने इतनी बारी गुर प्रसाद पाया ताकि मेरा अंदरला ते बाहरला हनेरा खत्म हो जाए, ये प्रसाद सिर्फ इतों मिलेगा, होर किसे थान तो ये प्रसाद मिलना नहीं है। तीसरा प्रसाद है मंजिल। गुर प्रसाद तो शुरू होए हाँ, तब प्रसाद ते जाना है, अंधेरा दूर करन तो बाद, लालच हटान तो बाद, उस प्रभु जो है उस दे जाने के प्रसाद तेरे वालों मिलया है, तब प्रसाद जो कुछ मैनू मिल रहा है आप को मिल रहा है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी पिता जिस वेले बाणी लिखते सन, जा उत्ते लिखते सन तब प्रसाद, ते जा लिखते सन तेरा जोर, ये सब कुछ तेरे जोर नाल हो रहा है। ते असी इंसान जिन्हां ने रहना नहीं है, साढ़े मुख चो निकलदा है मेरे जोर नाल हो रहा है। अते यही है पिता समझांदे सन कि त्रै गल्लां करके इस दे मुख विचों नहीं निकलदा तेरा जोर, वो तीन गल्लां दसम ग्रंथ च लिखिया हुई ने, ਸੁੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੁੱਤ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਣ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਟਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿੱਤ, ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠੀ ਏਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ। ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁੜੰਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਣਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਦਾ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਫਟ ਗਈ, ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ, ਕੰਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੱਟੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਈ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੰਬੂ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਵਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ, ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਪਏ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੜਾ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ, ਬੈਠੋ। ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਹੀ ਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਹੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ मैनू भी माण है अपने प्रभु उत्ते, मैनू भी माण है अपने अल्लाह उत्ते। डले ने इहो गल कही सी जिसले गुरु गोबिंद सिंह नूं देखिया ना, बिल्कुल इकला, जिवें आपने देखिया कोई नहीं, ते डला मिलिया कहन लगा ना डला ना मल्ला, गुरु गोबिंद इकला। ते गुरु गोबिंद सिंह कहन लगे ठीक है, ना डला ना मल्ला, गोबिंद ना इकला, उहदे नाल अल्लाह। बस ये जिस वेले होना शुरू होएगा, आप गुरु कृपा करेगा, ये तीसरा प्रसाद सवाए संगत तो मिल नहीं सकता, फिर कभी किसी व्यक्ति वल ध्यान नहीं जाएगा। असी है ही वाहेगुरु जी का खालसा हाँ, सानू यकीन बच जाएगा कि असी उस दे हाँ, अते ए यकीन बनान लई उनते बहुत अज की दुनिया अंदर भी कई साखियां चाकियां हुई ने, पर मैं तुहानू एक होर सुनाना जेड़ी जिसनू नोबल प्राइज़ मिलिया है, पिछले 2 साल हुए ने, उसने अपनी जिंदगी की एक दास्तान लिखी है। इन्हों का एक तरीका होंगे जो नोबल प्राइज़ मिले ना, जिस वेले उत्थे एक लैक्चर करता है स्वीडन अंदर, स्टॉकहोम अंदर, उसनों हक है कि मैं क्यों नोबल प्राइज़ मिले है, 5 मिनट 10 मिनट बोल रहा है। उत्थे कहन लगा मैं इस करके नोबल प्राइज़ मिलिया, अज मिल रहा है कि मैं एक दिन ये चीज़ जिस करके मैं अज इनाम मिल रहा है इजाद पिया करा, मैं रस्ता ना मिले, मैं सौ गया। जिसले मैं सौ गया मैं सुपने अंदर ये सुपना आया कि एक मारू थल दे अंदर मैं जा रहा हाँ, मेरे नाल एक बंदे दा होर साया है, एक बंदा मेरे नाल होर चल रहा है, मैं देख रहा हाँ असी दोनों पे टुरदे हाँ, ते दोनों दे पैरां दे निशान लग रहे हैं रेत अंदर। मैं पिछे भी मुड़ के देख रहा, 4 पैर पे टुरदे ने, मैं बड़ा खुश होया कि 4 पैर टुरदे पे हैं, कोई मेरे नाल है इस मारू थल अंदर। थोड़ी जी देर तो बाद 2 निशान मिट गए, ते कहिंदा सुपने विच मैं कहा ओ वाहेगुरु तुम्हें साथ छड़ गए, इस रेगिस्तान की धुप अंदर तेरे भी पैर सड़न लग पे, तेरे भी पैर सड़न लग पे। ते कहिंदा उस वेले मैनू आवाज़ आई ओ मूर्खा, ओ जेड़े पैर तेनू दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं, जिसले तेरे पैर बहुते सड़न लगे मैं तेनू अपनी गोद विच ले लिया ताकि तेरे पैर ना सड़न। बस भाई जिस वेले उहदा साया नाल रखांगे किसी दे पैर नहीं सड़न लगे। जे किसी व्यक्ति का सहारा ले लवोगे पैर की शरीर जल जाएगा, आत्मा जल जाएगी, कभी उसनू कोई रस्ता भी नहीं दिखाई देन लगा। जेड़ा इंसाना ने उचाइया पाइया ने उन्होंने पता है कि गोद उठा के किमें लै जाता है, साड़ा इतिहास से परे है कि किमें गोद उठा के सबनों। भाई दयाला ने की सी अरदास, सूरज प्रकाश जी लिखी हुई है, भाई दयाला जी ने यो ही, भाई दयाला भाई मनी सिंह जी सके भरा सन, एक बंद बंद कटा गया, यह भी इतिहास का बड़ा एक स्वाद है कि 37 भाई मनी सिंह जी दे रिश्तेदार शहीदियां प्राप्त कर गए पर कोई ढोलिया नहीं है, भाई दयाला जी सके प्रहासन। जलाद ने कहा जो करना ही कर लै, तेनू उबालन लगे हैं देग अंदर। कहंदे एक इजाजत दियो मैं अरदास कर लवां, मूँह मेरा गुरु तेग बहादुर वल कर दियो। उन्होंने देग दा मूँह चुल्हे दा मूँह उस पास कर दिता। हुण भाई दयाला जी की अरदास पढ़ो जो लिखी हुई है, भाई दयाला जी अरदास मूँह गुरु तेग बहादुर वल, अरदास गुरु अर्जन नूं कहंदे ने हे गुरु अर्जन एक वारी चंदू दी देग च उबलिया सैं, हुण तू आ के इस औरंगजेब दी देग च उबल जा। ते कहंदे ने सूरज प्रकाश वाले तुसी कहंदे हो भाई दयाला उबलिया है, पर सच्ची मुची फिर गुरु अर्जन उबल गया है। बस ये जिस वेले सानू ख्याल रहेगा कदी किसे नूं तोट नहीं आएगी, ये तीसरा प्रसाद मिलता है तव प्रसाद। चौथा प्रसाद है इतना कुछ पा के किसी वेले हंकार दा दा ना आ जाए, इस करके आख्या है चौथा प्रसाद मिलेगा इन्हीं के प्रसाद। क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे तो वड्डा है, आपने आख्या ये प्रसाद है असल जो मेरे को शक्ति है, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या रही, इन्हीं के प्रसाद पुण्य धाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सब शत्रु मरे, इन्हीं के प्रसाद कि मैं बनया हाँ, मेरी जितनी भी शक्ति है इन्हीं के प्रसाद है, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ परे हैं। जिस वेले इन्हीं के प्रसाद निकलेगा फिर संगत नु कोई निंदेगा नहीं, क्योंकि यकीन लवेगा सारी शक्ति तो इस को लई है। ये प्रसाद सानू इतों मिलता है, यही प्रसाद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर जोर देंदे सन कि इस प्रसाद में भी लैके जाना, कभी होमे दे दाज ना पैना कि देखो मैं ये कर रहा है, देखो मैं बना लिया है, देखो मेरे को हो रहा है। अजय तो वो न्यूटन वाली गल बड़ी सोहनी है, किसे गया तू तकरीबन 700 इजादा कर लिया, या एडिसन नू कहा किसे ने तू तो 800 इजादा कर लिया ने, तो न्यूटन ने कहा सी मैं तो अजय समुंदर के किनारे खड़ा होया होया सिर्फ जो छल समुंदर चो निकलती है बाहर सुट जाती है कोगने उ चुक चुक के मैं देखना पाया समुंदर का, अजे तो मैं हाथ लै ही नहीं सकिया। असी भी ऐसे ही हाँ, अजय गुरु ग्रंथ साहिब का सिर्फ नज़ारा कर रहे हाँ, अजय असी हाथ लै ही नहीं सके। अते जेड़ा भी इंसान ये आखन लगे ना कि गुरु ग्रंथ साहिब इच मैं पढ़ लिया है, देख लिया है, किथे लिखे आई, समझ लो उस अनजान नू पता नहीं है, क्योंकि आप गुरु जानता है कि किसे वेले भी हों दा दा सिख नू ना पवे। जे चार प्रसाद लेंदा रवेगा फिर इस नू हों दा दा नहीं पैन लगा, क्योंकि सब तो खतरनाक दा कोई होम मार दी है, लगी रहती है, तकदी रहती है कि मेरा किड़े हूँ बस विच आवे। ये बड़ी ऐसी है भी ऐसी, कोई ना कोई ढंग ढूंढ लें, कोई ना कोई रस्ता लभ लें, असं तो एक मुहावरा कड़िया बड़ा मार के क्ढने होमे न दरवाजे तो, ये रोशनदान रही आ जाती, रोशनदान बंद करने छत फाड़ के आ जाती है। इसलिए होमे न मारन का रस्ता होर कोई नहीं है सवाए शब्द तो, शब्द की शक्ति नारे ख्याल रवे कि मेरा गुरु कितना व्डा है, असी उन्हों की खाक भी नहीं हाँ। आपनों पता है ना भाई मती दास जी ने जरा कु ख्याल आ गया कि मैं लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट वजा दिया, ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे मती दास ये शक्ति पाई कितों आ, सिखी सी, कहन लगा आप दे चरणा चों, तो कहन लगे ये तू की शुरू कर दिता, कदी वाहेगुरु नाल शरीका नहीं करना, सिर्फ उसदे पाणे नू देखी जा, फिर देखी एक कौम दी उसारी किस तरह हुंदी है। ये सानू जाच सिखाते रह गए हैं, यही मैं समझना प्रसाद से सब तो वड्डा आखरी, जो हर सिख जो शहीद है, जो विद्वान है, जो प्रचारक है, जो ग्रंथी है, इसनू पा के टुरदा हुंदा सी। मैं एक गल तां सुना लगा, एक दिन भाई मरदाने नू भी ख्याल आ गया, शुरू शुरू विच मरदाना जिसले आम तौर पर आ जाता ख्याल, दिल भी बड़ा खुश हुंदा है कि चार बंदे बड़े ध्यान नाल सुनते पे हैं। भाई मरदाना जी ने जिसले रबाब लैके आया ना फरिंदे कोलों, तो गुरु नानक साहब को आ के रबाब वजाई सू वेंज दे किनारे, जिसले रबाब वजाई सू उसने देखिया पानी शांत हो जा रहा है, गुरु नानक साहब नाल बोल रहे सन, बाणी का पाठ हो रहा सी, कीर्तन हो रहा सी, बाणी गाई जा रही सी, वो देखता जरा वेंज का पानी इतने टिकया, वेंज बड़ी खतरनाक नदी सी, इतने बाणी इस तरह लगता जिवें पानी शांत हो गया, फिर देखता है पंछी जड़े ने टिक गए ने, फिर देखता है जिहड़े पशु ने आन जाण वाले भी टिक गए ने, यकदम उन्हें ख्याल आया वाह भाई वाह मेरी उम्र रबाब वजन नाल देख के कुछ हो गया। धन गुरु नानक पातशाह किसी नूं होमे का बहुता दा लगन भी नहीं सन देंदे, नाले साथी बनाना सी, आपने शब्द गाना बंद करता, पानी भी चल पिया, पंछी भी चहलाण लग पे, पशु भी दौड़ पे, तो उस वेले समझ आ गई मेरी रबाब की शक्ति नहीं है, ये शब्द की शक्ति है। अते उस वे मरदाने ने चरण पकड़ ले, पातशाह धा खान लगा सा होमे का, तुसा मैं बचा लिया, किसी राग की शक्ति नहीं है, किसी रसना की शक्ति नहीं है, किसी अलाप की शक्ति नहीं है, किसी जोड़ी की शक्ति नहीं है, ये सारी शक्ति शब्द की है। अते जिस वेले शब्द ते राग गाए जाएंगे उस वेले वातावरण भी शांत होएगा, हर चीज़ अपने आप मिलती रहेगी। इसलिए मैं अज बधाई भी देनी है भाई अमरीक सिंह जी नू, नाल बेनती भी करनी है, साडे घर दे अंदर बहुत कुछ पिया होया है, अते ए तुक ते उंज लिख के जेब विच रख लैनी चाहीदी है कि इस घर में है सो ढूंढ खाए, अवरी के मत तुम जाए, दूजे को ले घर विच ही है ढूंढ के देख। अते मैं कल आख रहा सा इत्थे इक रवाज है बाहरले मुल्कां अंदर सेल लगदी है, आम हर जगह सेल लगती है, असी भी कदी गुरुद्वारे अंदर नाम दी सेल लाइए,
ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਘਰਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੰਡੋ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੇਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਾਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਾ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂਡੇ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਂਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਹੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੇਰੋ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾਂ।